ओम शांति। तो आज का जो विषय है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो हम सब देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं और हमारा पुरुषार्थ ही है कि हमें निर्विकारी बनना है, सभी विकारों पर पूर्ण विजय हम पाएं, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन फिर भी जो और सभी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, तो उसमें जो क्रोध है बाबा कहते हैं और हम सब भी जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी सब विकारों का रूप फिर भी गुप्त होता है लेकिन क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जब प्रत्यक्ष होता है तो उससे हमें ज्यादा हानि होती है, और उसमें सबसे बड़ी बात तो होती है कि बाबा का नाम बदनाम होता है। कहेंगे कि आप आश्रम में जाते हैं या आश्रम से जाकर के आए हैं और घर में आए कोई बात हुई और गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो आपके जो बच्चे हैं या पोते पोती हैं जो भी, वो आपको कहेंगे मम्मी या दादा दादी जो भी हैं कि आप अभी अभी तो गए थे आश्रम पर और अभी अभी गुस्सा कर रहे हो। तो ऐसे कहीं भी जहां भी हम जाते हैं और यदि उनको मालूम है कि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा व्यवहार हर स्थिति में शांति वाला होगा। तो आपसे पूछते हैं पहले कि सभी भाई बहने ये समझते हैं कि जो बाबा हमें हमसे चाहते हैं कि हम गुस्से को जीतें, वैसे तो जब हम बीके बनते हैं तो काफी हद तक हमारा गुस्सा पहले से कम हो जाता है, और बहुत लोग इस बात के लिए हमें कहते भी हैं कि आपका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें बहुत अंतर आ गया है। लेकिन फिर भी गुस्से को पूरी तरह से जीतना वो शायद, मैं समझती हूँ जो ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई कोई ही ऐसा महसूस करते हैं कि हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तो जो ऐसा समझते हैं कि हमें कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई क्या भी हमें कह दे, हाँ, या कोई कितनी भी गलती कर दे तो भी हमें गुस्सा नहीं आता है, हम शांति से ही व्यवहार करते हैं, हम प्रेम से ही व्यवहार करते हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, 40-50 लोग हाथ उठा रहे हैं, तब तो कहेंगे आपको क्लास की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो जिन्होंने हाथ उठाया है, जिनको ऐसा लगता है कि क्रोध पर हमारी विजय हुई है, वो अपने लिए ताली बजाओ भले, या हम सब उनके लिए ताली बजाएंगे। और ये तो एक्चुअल में जो उनके साथ रहते हैं ना, दूर वालों से नहीं पता चलता है, जो 24 घंटे के साथी होते हैं वो सही रिपोर्ट दे सकते हैं कि वास्तव में गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें कई तरह से उसकी हानि उठानी पड़ती है। गुस्सा केवल एक विकार ही नहीं है, गुस्सा हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। गुस्सा तनाव का एक रूप माना जाता है, तो उसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर भी होता है। कहते हैं कि क्रोध एक एसिड की तरह है, और एसिड को जिस पात्र में डालते हैं वो उस पात्र को ही नष्ट करता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो दूसरे को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे अधिक वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। मनोविज्ञान कहता है गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है, एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी। जैसे पागल व्यक्ति को ये एहसास नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में किसी की भी स्थिति होती है। यानी क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उस समय हमारे मुंह में जो आता है वो हम बोलते हैं, और ज्यादातर हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाता है पर सुनने वाला जीवन भर तक नहीं भूलता, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है, जिसके लिए भी हम ऐसे शब्द, कड़वे शब्द बोलेंगे, निश्चित है कि वो पहले वाला प्रेम तो रहेगा नहीं। और कई बार ये स्थिति होती है कि संबंध टूट भी जाते हैं हमारे, उसका असर काफी समय तक बना रहता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम खुद भी अशांत होते हैं और दूसरों को भी हम अशांति देते हैं। गुस्सा करके शांति मिल जाती है, क्या कहेंगे, नहीं मिलती ना। तो हमारे मन में बहुत नेगेटिव विचार चलते हैं, गुस्सा करने के बाद मन में टेंशन होता है, चिंता होती है, मन में बदले की भावना आ जाती है दूसरों के प्रति। फिर सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा हम करेंगे जो इनका और अधिक नुकसान हो जाए, या इनसे हम अपना बदला पूरा कर लें। जैसे वैर भाव मन में पनपने लगता है, और जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे कभी भी मन में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, ये स्थिति हमारे मन की होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जहां गुस्सा होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं जीवन की सुख शांति समृद्धि को ये खत्म करता है, और फिर ब्राह्मण जीवन के हिसाब से तो ये विकर्म है। विकर्म किया माना 100 गुना दंड। वैसे हम जब अज्ञानी थे तब गुस्सा करते थे तो इतना पाप नहीं चढ़ता था, लेकिन ज्ञानी होकर के अगर गुस्सा किया तो फिर वो 100 गुना खाता बन जाता है। तो हमने जो कमाई की वो सारी कमाई, सारे दिन में अगर एक गुस्सा एक बार भी हमने कर लिया तो वो कमाई हमारी गई। आप अमृत वेले उठे, आपने योग लगाया, आप मुरली क्लास गए, मुरली सुनी, जो भी अपने नियम मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन के वो सब पालन किया, ये जमा किया, लेकिन किसी कारण से गुस्सा भी कर लिया तो जो जमा किया वो खाता माइनस हो गया। तो इसीलिए गुस्सा हमारे लिए हर तरह से हानिकारक है। शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात करें तो मेडिकल साइंस कहता है कि जब हम गुस्से में आते हैं तब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिन्हें कैटाकोलामिन्स कहते हैं, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं। तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम उत्तेजित हो जाता है। आप देखते हैं जो व्यक्ति गुस्से में आता है वो अपने हाथ पांव चलाने लगता है, क्योंकि मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं और मारने पीटने के लिए अपने आप हाथ उठने लगते हैं, सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो कहाँ जा रहा है, मांसपेशियों में जा रहा है। दिमाग का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और मांसपेशियों का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हार्ट में जो खून की पंपिंग है वो बहुत कम हो जाती है, और कई बार जिनको अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उनको एंजाइना हो सकता है। जब वो गुस्सा करते हैं एंजाइना माना उस सीने में दर्द हो सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं और ज्यादा गुस्सा किया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, और इसीलिए हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं कि बहुत गुस्सा नहीं करना, टेंशन में नहीं आना, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में ये हानिकारक केमिकल्स पैदा करते हैं। पर ये नहीं बता पाते कि गुस्सा कैसे नहीं करना। गुस्सा नहीं करना ये तो कहते हैं, लेकिन गुस्सा कैसे नहीं आए, क्योंकि गुस्सा तो एक रिएक्शन की तरह आता है। लोग अपने गुस्से की जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो ज्यादातर दो तरह से होता है। ज्यादातर या तो हम जोर जोर से बोलते हैं, या फिर मारपीट करते हैं, चीजों को उठा करके फेंक देना। उस अति में जाते हैं तो कोई लोग किसी को जान से भी मार देते हैं। दुनिया में लोग इस तरह से गुस्सा करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों का गुस्से का तरीका ये नहीं रहता है। ज्ञान में आते ही हम ये जो एग्रेसिव वे है इसको छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका अपनाते हैं हम, जिसको कहते हैं सप्रेस करना। हम कहते कुछ नहीं है, चुप रह जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे उस समय। गुस्से को पी जाना बोलते हैं इसको। लेकिन मन ही मन गुस्सा करेंगे, मन ही मन जो भी उसको हमें कहना है वो हम बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि हमने गुस्सा नहीं किया, तो उसका असर उतना ही होता है जितना हम जोर जोर से बोलकर गुस्सा कर रहे होते हैं। और छोटी छोटी बातों में कई बार आप घर में हैं, जाते हैं, खाना बनाया है और पता चला कि मनपसंद सब्जी नहीं है, और एक तो मनपसंद सब्जी नहीं, ऊपर से उसमें नमक कम है, या जैसा टेस्ट आप चाहते हैं वैसा टेस्ट नहीं है, तो गुस्से में आकर के थाली उठाकर फेंक देंगे। हाँ, ऐसा भी गुस्सा करते हैं कई लोग। माँ देखती है कि बच्चे ने कोई ऐसी महंगी चीज है वो तोड़ दी, बिना सोचे समझे जाकर उसको थप्पड़ लगा देंगे। बाद में समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस समय जो रिएक्शन होती है उस रूप में गुस्सा करते हैं। लेकिन ये दोनों तरह का गुस्सा, जैसे हम गुस्सा पी जाते हैं, मानो अगर हम दबाते हैं उसको, वो भी बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि ऐसे में अगर हमें बार बार ऐसा करना पड़ता है तो फिर वो डिप्रेशन पैदा करता है, मन में हीन भावना पैदा करता है, और उससे भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। और कई बार ज्यादातर ऐसा जो है वो या तो अधिकारी के सामने, जो हमसे बड़े होते हैं उनका हमें रिस्पेक्ट रखना है, उनकी बात हमें पसंद तो नहीं आ रही, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन रिस्पेक्ट रखना है, तो हम चुप रह जाते हैं। और फिर ऐसे में अगर बार बार ये स्थिति बनती है तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो तीन चार प्रकार से गुस्सा होता है। एक होता है पानी पर लकीर के समान, गुस्सा आया और चला गया, ठहरता नहीं है मन के अंदर। और ऐसा गुस्सा ज्यादातर उन लोगों का होता है जो हमारे प्रति शुभ चिंतक होते हैं, जैसे माँ बच्चे का संबंध है या गुरु शिष्य का संबंध है। तो माँ बच्चे को कुछ समझाना चाहती है और बच्चा समझ नहीं रहा, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती तो गुस्सा करती है। लेकिन जितना गुस्सा करती है फिर उससे ज्यादा वो बच्चे को प्यार भी करती है, तो फिर बच्चे के मन में वो गुस्सा रहता नहीं, भूल जाते हैं वो, और वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरे प्रकार का होता है बालू पर लकीर के समान, यानी जो बालू पर लकीर है वो कुछ घंटे ठहरती है। तो परिवार के सदस्यों में आपस में कोई नाराजगी हो गई, मनमुटाव हो गया, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, सास बहू है, लेकिन रहना तो साथ में ही है, तो वो नाराजगी ज्यादा समय चल नहीं सकती क्योंकि एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो फिर कोई एक झुक जाता है, अपनी गलती मान लेता है और धीरे धीरे वो बात हम भूल जाते हैं और फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। तीसरे प्रकार का गुस्सा होता है जो रिश्तेदारों में या मित्रों में होता है, जो हमें रोज नहीं मिलते, वो हमारी किसी बात को लेकर नाराज हो गए तो वो दिनों तक चलता है, इसको कहते हैं मिट्टी पर लकीर के समान। वो जब तक फिर हमें नहीं मिलेंगे दोबारा कोई अवसर पर, तब तक वो चलता रहेगा। जब हम अपनी गलत फहमी दूर करें, फिर से हमारी आपसी समझ बने, तो इस तरह से कुछ समय तक वो रहता है। चौथे प्रकार का जो गुस्सा है वो है चट्टान पर लकीर के समान। चट्टान पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, उसे मिटा नहीं सकते। तो किसी किसी के प्रति हमारा हिसाब किताब ऐसा होता है कि वो फिर एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन का नहीं होता, वो जीवन भर का होता है। यानी वो गुस्सा जीवन भर चलेगा, और केवल हम ही नहीं चलाएंगे उसको, वो वैर भाव जो रहेगा वो हमारी पीढ़ियां भी जो है वो उस वैर भाव से चलती रहेंगी, और आत्मा दूसरे जन्म तक भी ले जाएगी उसको। यानी मानो दूसरे जन्म में मिल गए कहीं आपस में, तो उस आत्मा को देखकर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये ना ही मिले तो अच्छा है। पता नहीं कारण क्या है, लेकिन जो हिसाब किताब बना हुआ है वो संस्कार अगले जन्म तक भी काम करता है। तो कोई कोई के साथ हमारा हिसाब किताब ऐसा होता है जिसे कहेंगे अमिट, मिटता ही नहीं वो, और चट्टान पर लकीर के समान वो हो जाता है। तो हम अगर गुस्से को जीतना चाहते हैं तो पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि जिन कारणों से हमें गुस्सा आ रहा है उसके बाबा ने क्या निवारण बताए हैं, और उस निवारण को हम अपनाएंगे तो वो गुस्सा आएगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा गुस्सा हमें आता है जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा, या जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिल रहा। तो मानो कोई मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, ऐसा तो आम होता है कि जो हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारी सभी अपेक्षाओं को पूरा करें। और बाबा ने हमें क्या समझ दी है, सभी हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। कोई भी दो मनुष्य इस दुनिया में एक जैसे हैं ही नहीं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो हर एक की सोच, हर एक की भावना, हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग है। और ये भी देखा गया कि जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि इन्हें मेरी बात माननी चाहिए, मानो हम अफसर हैं या घर में बड़े हैं और हम सोचते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर को या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमारी बात माननी चाहिए, तो वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, कभी एक बार ऐसा होता है कि वो नहीं मान रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो सही हैं और हम गलत हैं। तो ये भी संभव है, कभी हम गलत हो सकते हैं। हमेशा ही हम सही हों ये कोई जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो अगर उनकी बात सही है तो फिर हमें मान लेनी चाहिए, पर यहाँ क्या हो जाता है, अहम आ जाता है। जब हम खुद को बड़ा समझते हैं, जिसको बाबा देह अभिमान कहता है, फिर हम दूसरे की सही बात को भी मानने को तैयार नहीं है, और हम क्या सिद्ध करते हैं, मैं ही राइट हूं, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें ये समझना है, माना यहाँ अपने को ही हमें परिवर्तन में लाना है कि अगर वो सही है तो उनकी बात हम मान लें, और अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो हम साक्षी हो जाएं, साक्षी होकर के उस आत्मा के पार्ट को हम देखें। दूसरी बात होती है, मानो कोई काम में गलती कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, इतनी बार आपको समझा दिया फिर भी आप बार बार वही गलती करते हो। तो सामने वाले को कई बार भय हो जाता है गुस्से को देख करके, तो वो चुप रह जाता है, वो नहीं कहता कुछ भी। लेकिन यहाँ उसके परिणाम क्या होते हैं, उनके जो मन की भावनाएं हैं वो हमारे प्रति बदलने लगती हैं। अगर हम गुस्से से काम कराते हैं तो फिर वो स्नेह सम्मान नहीं रहता उनका हमारे प्रति, और वो कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे, मजबूरी से काम करेंगे। काम तो करना है तो मजबूरी से करेंगे, और इसीलिए जैसा काम हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा, उस काम में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। और फिर अवसर ढूंढते हैं वो कि कब हमें अवसर मिले और हम अपने अपने उसका गुस्से का बदला लें, और जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो हमारे लिए कोई ना कोई समस्या जरूर पैदा करेंगे, और कई बार इसके परिणाम भविष्य में बहुत बुरे हो जाते हैं। कोई हमसे गुस्से से काम कराए मानो तो हमें कैसा लगेगा, पसंद आता है? हमसे कोई गुस्से से काम कराए तो पसंद आता है, हमें लगता है काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा प्रेम से कह सकते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से कह सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों को भी पसंद होता है। तो इसीलिए काम कराना है तो प्रेम से हम काम कराएं दूसरों से। हो सकता है कि एक बार में कई बार व्यक्ति प्रेम से काम नहीं करेगा, दूसरी बार में करेगा, उसमें हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन फिर जैसा काम हम चाहते हैं वैसा ही वो कार्य होगा। यहाँ भी हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। परिवार में सबसे बड़ा गुस्से का कारण बच्चों के लिए, अभी भी दो दिन पहले बाबा की मुरली में था, आप सभी को याद होगा क्या कहा बाबा ने, बच्चों के ऊपर गुस्सा करना है या नहीं करना है? बाबा ने कहा कभी भी बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना है, उनको भी अपना भाई समझो। वो भले शरीर में छोटे हैं लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, यही कहा ना बाबा ने, आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, वो आपका छोटा भाई है, प्यार से समझाओ। फिर कृष्ण का भी मिसाल दिया कि जैसे उसको ओखली से बांधते थे, ऐसा शास्त्रों में गायन आता है। तो कोई विधि अपनाओ वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है, बच्चों को भी हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, फिर आप जो कहते हैं वो बच्चे करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि वो पढ़ें, टीवी नहीं देखें, जरूर किताब उठा लेंगे, किताब खोल के पढ़ रहे हैं, आप खुश हो जाते हैं कि देखा मैंने गुस्सा किया ना तो अब ये पढ़ने लगा, लेकिन वास्तव में वो पढ़ नहीं रहा है। आपने क्या कह दिया उसको गुस्से में, वो उसके मन में चलता रहता है कि मेरी माँ ने या मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा, और कई बार बच्चे वो शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं फिर, यानी उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होने लगता है। और फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं आपका सामना करने लगते हैं, क्योंकि आपसे ही उन्होंने सीख लिया है कि अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो। हमारे माँ बाप गुस्सा करके अपनी बात मनवाते हैं, तो अगर हमें भी अपनी बात मनवानी है तो क्या करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हैं, हमने ये तो नहीं सिखाया इनको, ये कहाँ से सीख गए? पर सिखाया किसने, सिखाया किसने, हमने ही सिखाया, तो ये सही तरीका नहीं है। बाबा हमें क्या कहते हैं, उनको भी आत्मा समझना है, हम उनके मार्गदर्शक हैं, जरूर हमें उन्हें समझाएं कि सही क्या है गलत क्या है, कारण भी बताएं कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब तक आप उन्हें नहीं समझाएंगे तब तक वो आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। उन्हें हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि इसके कारण इसको ऐसा करना है, और यदि वो कन्विंस हो जाते हैं तो जरूर वो करेंगे जो आप चाहते हैं उनसे। और अगर नहीं करते हैं अपने संस्कारों के कारण, मानो वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो भी फिर हम साक्षी होकर के उनके भाग्य पर उन्हें छोड़ दें। अगर वो गलती करते हैं तो अपने आप ठोकर खाएंगे, और कई बार व्यक्ति खुद ठोकर खाकर ज्यादा सीखता है, किसी के कहने से शायद उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब खुद गलती करते हैं और पता चलता है कि ये मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करता तो मैं ज्यादा सफल होता, तो अपने आप सीखेंगे। तो उन आत्माओं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखें और बाबा के ऊपर छोड़ दें। हम ट्रस्टी हैं, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, बाबा के हैं। जहां हमारा मेरापन होता है ना, जिसको मोह कहते हैं, और माताओं में ये ज्यादा होता है, तो जहां मोह होता है वहां फिर हम उनसे बहुत अपेक्षा रखने लगते हैं, और वो हमें बहुत दुख पहुंचाती है कि मेरे बच्चे से हम चाहते हैं ये करे, ये भी थोड़ा क्लास में जाए, ये भी थोड़ा ज्ञान सुने, ये पढ़ाई में इतने अच्छे नंबर लेकर आए, जो भी इसके संस्कार ऐसे हों, हम सारा उसके प्रति सारा भविष्य हम निश्चित कर लेते हैं, और फिर जब हमारी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो मोह दुख देता है, तो फिर दुखी भी कौन ज्यादा होता है, हम ही ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। तो इसीलिए बाबा का है, और उस आत्मा का जो पार्ट है ड्रामा में, वो आत्मा अपना पार्ट बजाएगी। हमें सिर्फ शुभ भावना रखनी है, उस आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना रहे। फिर मानो कोई हमारी कमी निकालता है, हम संबंधों में रहते हैं तो हम सब में गुण अवगुण है, तो कोई हमारी कमी नोट करता है तो हमें कहता है तो हमें पसंद नहीं आता। इंसान को अपनी कमी सुनना पसंद नहीं आता, अपनी तारीफ सुनना पसंद आता है। पर ज्ञान के अनुसार बाबा क्या कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो क्या निंदा करने वाला मेरा मित्र हो सकता है, क्या कहेंगे? हो सकता है, हाँ? क्यों हो सकता है मित्र? बाबा कई बार कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की दूर की नजर होती है ना, वो कमजोर होती है। नहीं, दूर की नजर तेज होती है और अपने नजदीक की नजर कमजोर होती है। दूसरों की कमियां तो हमें ज्यादा दिखाई देती हैं, अपनी कमियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर कोई मेरी कमी बता रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं 1% वो हमारे अंदर होती है। कहने वाला कई बार उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर कह देता है, शायद वो उतना नहीं होती। मानो आप नम्र हैं स्वभाव से, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके अंदर अभिमान है, पर अगर कहता है तो कहीं ना कहीं 1% हमारे अंदर वो ईगो है, तभी कहा जा रहा है। अगर आप अपना काम बहुत एक्यूरेट करते हैं, टाइम पर पूरा करते हैं, जिम्मेवारी से करते हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि आप लापरवाह हैं, आप अलबेले हैं। लेकिन अगर कहीं हमारे काम में कमी रह जाती है, माना कभी कैसे कभी कैसे, कभी तो हम अच्छी तरह से अपना काम जिम्मेवारी से करते हैं और कभी अलबेले भी हो जाते हैं मानो, तो कहने वाले को मौका मिलेगा, हाँ, तो वो हमारे लिए कह सकता है। तो 1% भी कहां ना कहां वो कमी हमारे अंदर है, तभी कहा जा रहा है। तो वो कमी यदि हम रियलाइज करते हैं और उस कमी को दूर करते हैं, हम सब सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास आए हैं हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए, तो उसका तो हमें थैंक्स मानना चाहिए कि उसने मुझे रियलाइज कराया ताकि हम इसको निकाल सकें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो कमी हमारे अंदर सचमुच नहीं होती, और कई बार लोगों को गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी हो जाना या कई बार ईर्ष्यावश भी, कोई हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, उस भाव से भी कई बार लोग हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं। तो हम स्पष्ट करें, या तो हम कोशिश करके उसको स्पष्ट करें कि भाई ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है। पर अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करें, अपने मन पर नहीं लें। एक बार मम्मा के बारे में ये बात आती है, जब साकार बाबा का समय था तब कचहरी लगती थी, रोज रात को सब बैठते थे क्योंकि यज्ञ में 400 भाई बहने रहते थे और कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती थी आपस में, व्यवहार में, संबंध में, तो रात को लेन देन करके उसको खत्म कर देते थे। तो एक बहन ने मम्मा को कहा कि मम्मा, ये बहन ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा और ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा है नहीं। तो मम्मा ने उसको कहा, इसने कहा तुमको, और उसने ये कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ मम्मा। तो मम्मा ने उसको पूछा कि अच्छा तुम्हें दुख हुआ तो कहाँ लगा तुम्हें दुख? तो उसने कहा कि मम्मा मन में लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में दुख आया तो कहाँ से आया? वो सोचने लगी तो उसने कहा कान से आया, जो बात गई वो कान से गई अंदर। तो मम्मा ने उसे समझाया कि देखो अगर तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे हम बंद करते हैं ताकि जो तूफान की धूल मिट्टी है वो मेरे घर को गंदा ना कर दे। तो जब तुम्हें पता था तो तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? उसको अपने अंदर क्यों आने दिया? तो कई बार कई भाई बहने कहते हैं कहना बहुत आसान है लेकिन सचमुच जब ऐसा होता है, कोई हमारा अपमान करता है या कोई हमारे से ऐसा व्यवहार करता है तो हमसे सहन नहीं होता है। तो बाबा ने हमें सहन शक्ति भी सिखाई है और इसके लिए बाबा ने हमें क्या समझ दी है, ये हमारा आपस का अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों से हम ब्राह्मण आत्माएं 84 जन्मों से एक दूसरे के समीप संबंध में आते रहे, हमारे हिसाब किताब बने हैं और ये अंतिम जन्म है और हम सभी को यहाँ ही चुप्तू करना है। तो वो किसी ना किसी रूप में संबंध संपर्क में आएंगे। तो अगर कोई मेरा अपमान करता है या मेरे लिए कोई ऐसी बातें कहता है जो गलत हैं मानो, तो भी हमें उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। उससे हम अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे और अगर हम भी वही भाव उसके प्रति रखते हैं, हम भी वैसे ही शब्द फिर बोलने लगते हैं, तो उस हिसाब किताब को हम और बढ़ा लेते हैं, बल्कि 100 गुना हम बढ़ा लेते हैं। तो ये बाबा ने हमें विधि बताई है कि इस विधि से हम उस हिसाब किताब को धीरे धीरे चुकतू करते रहें। और 5% परिवार में ऐसी आत्माएं जरूर मिलेंगी, 95% से हमें स्नेह सहयोग मिलेगा, लेकिन 5% हिसाब किताब वाले भी जरूर हमारे सामने आते रहेंगे, जो हमें लगेगा पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, हम इनके प्रति हमेशा अच्छा भाव रखते हैं, कभी भी हम इनका बुरा भी नहीं सोचते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, वो पता नहीं क्यों वाली बात हमारे मन में आती है ऐसी आत्माओं के बारे में। माना पूर्व जन्मों का वो हिसाब किताब है जो हमें आज समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भले हमें उसके लिए फिर अलग से योग लगाना पड़े, हमें मनसा सेवा करनी पड़े, लेकिन हम विशेष पुरुषार्थ करके भी उन आत्माओं के प्रति अपनी वृत्ति को शुभ भावना, शुभ कामना की ही बनाएं। कभी कभी हम गुस्सा नहीं करते, दूसरे हम पर गुस्सा कर रहे होते हैं। जब दूसरे हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं उस समय तो सहन शक्ति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। दूसरे का गुस्सा सुनकर के मुझे भी गुस्सा आने लग जाता है। तो ऐसे समय पर हम थोड़ा चुप रह जाएं, उस समय शांत रह जाएं, और मानो उसकी गलती है भी सही, कई बार हमें लगता है कहना भी चाहिए, तो भी हमें उस समय नहीं कहना चाहिए। उस समय हम बिल्कुल शांत रहें और 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद कितना हम धैर्य रख सकते हैं, थोड़ा हम उसको पोस्टपोन करें, थोड़ा हम उसको टाल दें। और जब हम थोड़े समय के बाद फिर वो बात कहते हैं, तुरंत नहीं उसको जवाब देते, थोड़े समय के बाद कहते हैं, तो सामने वाला उसे समझ पाता है। और नहीं तो दोनों ही गुस्से में बात करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ रहे, वो अपने को राइट समझ रहा है, वो अपने को राइट समझ रहा है, दोनों ही राइट, तो गलत कौन? समस्या बढ़ती है हमारी, कभी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। तो एक बार ऐसे ही एक ऑफिसर थे और उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग रखी थी और उनको पता था कि आज मीटिंग में कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जब मुझे गुस्सा आएगा और अगर मैंने गुस्से में जवाब दिया तो मीटिंग सफल नहीं होगी और ये बहुत जरूरी है कि मीटिंग आज सफल रहे। तो उन्होंने थोड़ा उपाय किया उसका और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे टेबल पर एक जग पानी और ग्लास रख देना। तो मीटिंग के बीच बीच में जब भी कोई ऐसी बात होती थी वो आराम से ग्लास में पानी भरते थे, उसको पीते थे और फिर उसके बाद जब जवाब देते थे तो शांति से जवाब देते थे और इसके कारण सचमुच मीटिंग सफल हो गई। तो जब मीटिंग से बाहर आए तो असिस्टेंट ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, सर आपकी मीटिंग तो बहुत अच्छी रही लेकिन आज आप मीटिंग में बार बार पानी पी रहे थे, तो क्या बात थी, आपको सचमुच इतनी प्यास लग रही थी या आप कोई नेचुरोपैथी कर रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ना तो मुझे प्यास लग रही थी और ना ही मैं नेचुरोपैथी कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने अपनी एंगरपैथी किया कि जब भी मीटिंग में कोई ऐसा बोलता था और मुझे गुस्सा आता था तो मैं पानी पी लेता था और पानी के बाद मैंने शांति से जवाब दिया और इसीलिए लोगों ने भी उसको शांति से लिया और हमारे जो निर्णय हुए वो सही समय पर हो गए और मीटिंग सफल हुई। तो जरूरी नहीं है कि गुस्सा कम करने के लिए हमारे सामने कोई पानी का गिलास हो। कहने का भाव है उसको हम पोस्टपोन करने का कोई अपना तरीका। बाबा ने हमें ओम शांति सिखाया है, हमारे लिए वो मंत्र की तरह है, तो मन ही मन हम 10 बार 20 बार उस स्वरूप में स्थित होकर के ओम शांति बोलें। और हमें पता है कि जब हम कहते हैं ओम शांति 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 तो अपने आप मेरा स्वरूप स्मृति में मुझे आ जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो वो शांति की शक्ति मेरे अंदर अपने आप आ जाएगी और अगर हम ये हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद भी हमें मिलेगी। मानो कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो बाबा कई बार कहते हैं कि कहीं आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाने का। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे शांति देव और शांति देवियां हैं, हम सहन शक्ति के अवतार हैं जो भी कहें, और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि मुझ आत्मा से उन्हें शांति की शक्ति अनुभव हो, हमसे उन्हें शांति की प्राप्ति हो, तो उसकी जो क्रोध की अग्नि है वो भी शांत हो जाए। कई बार बाबा कहते हैं मुरली में मुख में मुलहरा डाल दो। हाँ, मुलहरा डाल दो माना अगर मुख में कुछ डाल दिया तो बोल ही नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे तो जवाब ही नहीं देंगे उस समय। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं फूल बरसाओ उसके ऊपर, गुस्सा करने वाले के ऊपर फूल बरसाओ, तो कोई सचमुच फूल बरसाने वाली बात नहीं है, ऐसे फूल बरसाएंगे तो वो और ही गुस्सा करने लगेगा। लेकिन फूल बरसाने का मतलब क्या है, मुख से फिर भी हमारी वाणी कैसी हो, मीठी हो, हमारा उनके प्रति रहम भाव हो, हमारा उनके प्रति प्रेम भाव हो। देखो हम इतिहास में देखते हैं जिन्होंने समाज में बड़े बड़े परिवर्तन लाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गुण थे, उनके अंदर सहन शक्ति थी, क्षमा भाव था, प्रेम भाव था, रहम भाव था, और वही उनकी क्षमा दूसरों के लिए शिक्षा हो जाती थी। वो गुस्सा करके नहीं समझाते थे किसी को, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने कभी बच्चों को गुस्सा करके नहीं समझाया, हमारी दादियों को हम देखते हैं कभी किसी को गुस्सा करके काम नहीं करवाते हैं या समझाते हैं, लेकिन जो उनका सबके प्रति प्रेम है वो प्रेम ही दूसरों में परिवर्तन ले आता है। और जहां सहन शक्ति की हम बात करते हैं तो प्रेम से ही हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो शास्त्रों में एक कहानी आती है विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की, दोनों ही समकालीन ऋषि थे, लेकिन वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्म ऋषि कहलाते थे और विश्वामित्र राज ऋषि कहलाते थे, और इसका उन्हें बहुत जैसे द्वेष भाव था वशिष्ठ के प्रति कि वो ब्रह्म ऋषि हैं और मैं राज ऋषि क्यों हूँ, मेरे तप में और उनके तप में क्या अंतर है, हम समान ही तो हैं। और एक बार ऐसे ही किसी अवसर पर ऋषि वशिष्ठ ने उनको राज ऋषि भी कह दिया, तो इतना क्रोध आया उनको, वो ऋषि वशिष्ठ ने भी देखा कि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया है और वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे ही गुस्से में थे वो, तो उन्होंने उसी दिन योजना बना ली कि मैं ऋषि वशिष्ठ का वध कर दूंगा, आज ही शाम को मैं जाऊंगा इनके आश्रम पर। और वो योजना बना करके शाम के समय उनके आश्रम के पास में एक पेड़ था, उसके पेड़ के पीछे छुप गए जाकर कि जैसे ही मौका मिलेगा इनका वध करना है मुझे। तो उस दिन पूर्णिमा का दिन था और आसमान में चांद जल्दी ही निकल जाता है और बहुत सुंदर लग रहा था। वो दोनों पति पत्नी आंगन में बैठे थे, आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो पत्नी ने जैसे ही वो चांद देखा तो अनायास ही, क्योंकि ऐसे चांद को देख करके उसकी उसकी तारीफ मन से निकल ही जाती है कि देखो ये पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर लग रहा है। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि ये चांद ऐसा ही सुंदर है जैसे हमारे विश्वामित्र का तप है, ये चांद ऐसा ही शांत है जैसे हमारे विश्वामित्र का तप है। अब वो छुपे हुए थे पेड़ के पीछे, उन्होंने सुना कि ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और कहा तो मैं इनका वध करने आया हूँ, हाँ मैंने मन में ऐसे भाव रखे हैं इनके प्रति। तो उनको जैसे ग्लानि हुई, क्योंकि थे तो ऋषि, निकल के आ गए बाहर और उनके चरण छूके, कहा मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा, उठाया उनको, कहा उठो ब्रह्म ऋषि, आप मेरे से क्यों माफी मांग रहे हैं। तो वो उनको आश्चर्य से देखने लगे कि आप मेरे को ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं और उस दिन तो आपने मेरे को राज ऋषि कहा था, अगर यही ब्रह्म ऋषि आपने मुझे उस दिन कह दिया होता तो आज मैं आपको वध करने का विचार लेकर के आपके आश्रम में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन आप सचमुच राज ऋषि थे, लेकिन आज क्योंकि आपका अहंकार खत्म हो गया, आपके अंदर नम्रता आ गई, उनके चरण छुए उन्होंने, तो आज आप सचमुच ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। तो जो उनका क्षमा भाव था, उस क्षमा भाव ने विश्वामित्र को परिवर्तन कर दिया। तो हम भी किसी के प्रति जब ऊंचे भाव रखते हैं, जो बाबा हमें कहता है शुभ भावना शुभ कामना रखें, क्योंकि हमें पता है कि ये आत्मा इस समय परवश है। वो आत्मा गुस्सा क्यों कर रही है, क्योंकि माया के वश है और माया के वश है उसके तमो प्रधान संस्कार इमर्ज हो गए हैं, और हम जो हैं वो अभी हम अपने सत्व प्रधान संस्कारों में हैं। हमारी शांति की शक्ति का प्रयोग करके हम उसके गुस्से को शांत करने का प्रयास करें, तो फिर ऐसे हम उसमें परिवर्तन लाते हैं। हो सकता है एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में नहीं आएगा, चार बार में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हरेक के संस्कार पक्के होते हैं, कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे कि इनमें परिवर्तन आ गया है, ये बदल चुके हैं। और इस तरह से ही ऐसे महान आत्माओं ने पूरे समाज में परिवर्तन लाया है। ऐसे कितने ही किस्से हैं, अगर हम वो सुनाने लगेंगे तो और समय अधिक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्रोध का कड़ा संस्कार है, कई बार हम सब जानते हैं बाबा हमें कहते हैं, हम खुद भी अपने गुस्से को जीतना चाहते हैं, लेकिन जन्मों जन्मों का संस्कार है तो इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ता, फिर गुस्सा कर जाते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे मुख से निकल गया, या इतना जोर से मैंने बोला, ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो फिर विशेष पुरुषार्थ इसके लिए हम करें योग के समय, हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि किस बात से मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। पहले अपने आप को हमें देखना पड़ेगा, मानो कोई मेरी बात नहीं मानता, तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कोई मेरे से झूठ बोलता है, मुझे धोखा देता है, तब मुझे गुस्सा आता है, या जो भी मतलब बच्चे हैं ऐसा करते हैं तब मुझे गुस्सा आता है। तो जो भी कारण समझ में आता है, बाबा ने उसका हमें क्या निवारण बताया है, ज्ञान तो हम सब जानते हैं, उस निवारण को भी अपने मन में स्मृति में लाना है। तो पहले हम आधा घंटा पावरफुल योग करें, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और उस समय हम अपने आप को खुद समझाएं वो योग करने के बाद कि ये ऐसा करता है इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, और अब भले ही ये ऐसा करेंगे तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो कारण निवारण आप अपने आप को समझाओ, क्योंकि बाबा के ज्ञान के अनुसार मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है ना, जो भी कारण आपको समझ में आया। और फिर हमने सारे दिन हम कर्म व्यवहार में आए और वही परिस्थिति हमारे सामने आई, फिर भी हमें गुस्सा आ गया, मानो हमने सोचा अपने आप को समझाया फिर भी गुस्सा आया, लेकिन आप देखेंगे कि अब उसकी इंटेंसिटी पहले से कम है, उतनी तीव्रता से हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें याद आ जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ बार हमें करना पड़े, जैसे कहते हैं 21 दिन तक हम उसका निरंतर अभ्यास करें, अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है तो कम से कम 21 दिन, नहीं तो उससे भी डबल कई बार हमें करना पड़ सकता है, कितना हमारा कड़ा संस्कार है। और फिर आप देखेंगे 10 बार 11 बार आपने कोशिश की, और उसके बाद वही परिस्थिति है, लेकिन अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप उस पर विजय पा लेते हैं। तो ये अपने आप में परिवर्तन हम फिर महसूस करते हैं, तब हम कहेंगे कि क्रोध पर सचमुच हमने विजय पा ली, कि वही परिस्थिति जिसमें पहले मुझे गुस्सा आता था, अब वही परिस्थिति आने पर भी मुझे कोई प्रभाव नहीं, मेरा मन फिर भी शांत है, मेरी अवस्था फिर भी अच्छी है। गुस्से के कई बार सूक्ष्म रूप होते हैं, बाबा कहते हैं क्रोध के अंश वंश को भी हमें जीतना है, ये मोटे रूप के गुस्से की बात अलग, लेकिन अंश वंश बाबा कहता है ईर्ष्या द्वेष और नफरत के भाव रखना, रौब रखना थोड़ा, हाँ थोड़ा तो अपना रौब होना चाहिए, ऐसा भी समझते हैं कि बिना रौब के तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, तो कई बार बाबा ऐसे कहता है रौब नहीं रुहाव रखो, रुहाव रखना माना रूहानियत का जो हमारा नशा होता है, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है, वो दूसरों को अपने आप कंट्रोल में रखता है। कई बार हम देखते हैं कि प्रेम से जब हम काम करना चाहते हैं तो सचमुच लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत सहन करते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, और कमजोर समझते हैं माना फिर सोचते हैं कि हाँ इनके साथ तो हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, ये तो कुछ कहने वाले ही नहीं है, फिर ये भी समझते हैं ये तो ओम शांति वाले हैं, ठीक है इनका फायदा उठाया जा सकता है। ये स्थितियां भी कई भाई बहनों को सामना करनी पड़ती है कि जब हम बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत प्रेम से चलते हैं, बहुत ही दूसरों को सहन करके चलते हैं, तो सहन शक्ति वास्तव में कमजोरी नहीं है, तभी उसको शक्ति कहा गया। हो सकता है उसका प्रभाव थोड़ा देर से होता है, लेकिन होता जरूर है और फिर अविनाशी होता है, ये हमें निश्चय समझना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रेम से हमारा डिसिप्लिन बिगड़ रहा है तो कई बार कहते हैं कि हम थोड़ा सा ऑफिशियल हो जाएं, यानी दृढ़ता दिखाएं अपनी कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हमें पसंद है, इससे आप मर्यादा के विपरीत जाएंगे तो वो सही नहीं है, वो उनको समझ में आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक शास्त्रों में बहुत अच्छी कहानी आती है कि कैसे हमारी वो एक्टिंग, सिर्फ एक थोड़ा रूप दिखाना उसका, जिसको कई बार लोग आंख दिखाना कहते हैं, पर वास्तव में आंख दिखाने की भी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उस रूप में हम ऑफिशियल हो जाएं, गंभीर हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें ये बात पसंद नहीं है और ये इस मर्यादा अनुसार ही होना चाहिए या इसका ये संयम और अनुशासन बना रहना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही एक गांव में कोबरा निकला। वो कोबरा सांप बहुत जहरीला होता है, तो कई लोगों को उसने काटा, उनकी मृत्यु हो गई। तो लोग बहुत डर गए उस गांव के कि ये कोबरा कभी भी निकलेगा और किसी को भी काटेगा। तो उसी समय उस गांव में एक संत आए और उनको पता चला कि इनको सांपों को वश करने की सिद्धि है। तो पहुंच गए उनके पास कि हमारे गांव में एक कोबरा है, वो कभी भी निकलता है और कितने लोगों को उसने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो आप उसको वश कर दीजिए। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे वश में नहीं आता है। तो वो संत ने मंत्र जपा और वो सांप को अपने सामने बुला लिया और उस सांप को मंत्र से ही वश करके कि अब वो किसी को भी नहीं काटेगा, ऐसा करके छोड़ दिया। तो ऐसा ही हुआ, उसके बाद से वो कोबरा निकलता था लेकिन किसी को काटता नहीं था। वो निकलता था क्योंकि उसको अपना भोजन शिकार तो चाहिए, लेकिन गांव वालों को अभी मौका मिल गया कि अब ये कोबरा तो काटेगा नहीं, तो इसको जान से ही मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो लठ लेकर के और वो पीछे पड़ जाते उसके, लेकिन वो फटाफट बिल में घुस जाता, वो शिकार नहीं कर पाता। तो कई घाव हो गए उसके और बिल्कुल दुबला पतला हो गया क्योंकि कुछ खा नहीं पा रहा था। मरने जैसी हालत में वो कोबरा पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो संत आए, फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा कि अब कैसा है। तो बोला कि आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया मानते हैं, सचमुच वो कोबरा ने उसके बाद किसी को नहीं काटा है। फिर उन्होंने सोचा देखते हैं उस कोबरा की क्या हालत है। तो फिर मंत्र जप के उन्होंने फिर कोबरा को बुलाया अपने पास, तो देखा कि ये तो मरने जैसी हालत में पहुंच गया। तो पूछा उसको सांप को कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो उसने कहा कि आपने मुझे वश किया, किसी को काटना नहीं, तो लोगों ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया, मैं कुछ खा पी भी नहीं सकता हूं। तो फिर साधु ने उसको समझाया कि जरूर मैंने तुमको काटने के लिए मना किया, लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए मना तो नहीं किया। तुम अपना फन तो दिखा सकते हो, तुम फन दिखाओगे लोग डर के भाग जाएंगे, तुम्हारे कोई नजदीक नहीं आएगा। तो समझ गए आप वो क्या है, काटना नहीं, सिर्फ एक्टिंग करना है, सिर्फ दिखाना है, फन दिखाना है। तो कभी कभी हमें अगर क्योंकि कलयुग का समय है और आत्माएं बहुत तमो प्रधान है, बहुत विकारी है, तो कई बार सचमुच हमारा वो प्रेम का स्वरूप काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा वो ऑफिशियल रूप हम ले सकते हैं। तो ये कुछ विधियां तरीके जो बाबा हमें बताते हैं, उन्हें हमें धारण करना है, उन्हें हमें स्मृति में रखना है और प्रयोग करना है। तो समय पर हम उसे प्रयोग करेंगे तो जरूर हम क्रोध पर विजयी होंगे, और क्रोध पर विजयी होंगे तो और विकारों को जीतना भी हमारे लिए आसान होगा। बाबा कई बार कहते हैं जैसे गुणों का आपस में संबंध होता है, ऐसे ही विकारों का भी आपस में संबंध होता है। तो अगर हमने एक भूत पर बीच जीत पा ली तो अन्य भूतों को जीतना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।